आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। कैसे हैं बच्चों आप? आ गई किरण दीदी बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां लेकर के। लेकिन पहले हम बात करेंगे एक संदेश की। हाँ, तो बच्चों और बड़ों जो भी ये कहानी सुनते हैं सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंचतंत्र की कहानियाँ आशा की किरण में भारत समेत 8 देशों में सुनी जाती है और उसमें स्वीडन भी एक है। तो स्वीडन में हमारी रहने वाली एक लिसनर हैं जो रेगुलर इन कहानियों को सुनती हैं और उनको बहुत अच्छी लग रही है, उनको भारत की याद भी आने लगती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो विजय लक्ष्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं उनको। वैसे वो वहाँ पर जॉब करती हैं, बिजी रहती हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर इसको सुनती हैं और अपनी बात को उन्होंने टाइम निकाल कर हम तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी अपने जो कज़िन ब्रदर सिस्टर्स हैं उन तक भी इन कहानियों को पहुँचाएँ, अपने कॉलिग्स वहाँ पर हों जो भारत से हों, हिंदी समझते हों, उनको भी ज़रूर ये कहानियाँ और आशा की किरण के दूसरे प्रोग्राम भी सुनने के लिए कहें। क्योंकि होता है ना कि दूसरे देश में अगर अपनी भाषा में हम कुछ सुनते हैं तो आनंद आ जाता है। तो अब डिजिटल युग है, अब कोई सीमा ही नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ सुन सकते हैं इन चीज़ों को। तो ज़रूर ये काम कीजिएगा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी मौर्य। और आपके इस संदेश को हम बच्चों को सुनवा रहे हैं और उसके बाद कहानी सुनेंगे।
हेलो, मैं विजय लक्ष्मी मौर्य बोल रही हूँ। मुझे आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं स्वीडन में रह रही हूँ और इन कहानियों को सुन के मुझे भारत की याद आ जाती है। इन कहानियों में दी गई शिक्षाएँ आज भी उतनी ही वैध हैं। इन्हें अब बड़े होकर सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पंचतंत्र की कहानियाँ कड़ी कड़ी में जोड़कर पहली बार सुना है। आप किरण जी इसी तरह हमें कहानियाँ सुनाती रहिए।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, बुद्धि बढ़ाएगी, सफल बनाएगी, जीवन का ये मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो, गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो, आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को किरण दीदी का नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं ना? गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने आप को बचा के रखिए। वैसे भी बाहर निकलना नहीं है बिना काम के, लॉकडाउन में थोड़ी सुरक्षा रखनी है। लॉकडाउन तो हट रहा है लेकिन हमको अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी है। ध्यान रखोगे ना आप लोग? तो फिर आप कहोगे हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें दीदी? तो तुम कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, है ना? तो अच्छा बताइए, अभी तक जो हमने आपको कहानियों की माला पूरी पिरो कर दी है, आपको याद है कि नहीं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे? बच्चों आपको पता है वर्धमान नाम का एक व्यापारी था, वो संजीवक और नंदक नाम के बैलों का रथ बना करके और व्यापार करने के लिए निकला था। और उसका जो बैल था संजीवक, वो दलदल में फंस गया और वर्धमान को उसको छोड़ करके जाना पड़ा। संजीवक अपने आप ठीक हो गया और नदी के किनारे पानी पीता और घास खाता, मोटा ताजा हो गया। उसी नदी किनारे पर पिंगलक नामक शेर पानी पीने के लिए आता था। उसने जब मोटे ताजे गर्जना करने वाले संजीवक को देखा तो डर गया और जा कर के अपने समूह में जाकर बैठ गया। इस बात को उसके पीछे पीछे रहने वाले दो गीदड़ देख रहे थे। उनके नाम है दमनक और कटक। दमनक और कटक ने एक दूसरे से कहा, आज ही राजा डर क्यों गया? जंगल का राजा शेर पिंगलक डर के बैठा है। पिंगलक शेर ने उन दोनों को मंत्री पद से हटा दिया था। उन्होंने सोचा, ये अच्छा मौका है, हम जल्दी से पहुंच के अपनी समझदारी दिखा के मंत्री बन जाएंगे। कटक ने कहा, देखो दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो फिर उसने सुनाई बंदर और लकड़ी के खूंटे की कहानी। फिर भी दमनक ने कहा कि नहीं, हमको हिम्मत से काम लेना चाहिए। दमनक जो है गीदड़, वो पिंगलक शेर से मिलने गया और शेर से कहा कि आप ऐसे चिंतित क्यों लग रहे हैं? उसने कहा कि नदी किनारे एक बड़ी गर्जना करता हुआ अजीब सा जानवर दिखा, वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जंगल ही छोड़ कर के चला जाऊँ। तो दमनक ने उसको समझाया कि अगर आप चले गए तो ये तो वैसे ही होगा जैसे गोमायु गीदड़ को ढोल में पोल लगी थी। तो गोमायु गीदड़ की ढोल में पोल वाली कहानी हमने पिछली बार सुनी थी। फिर दमनक ने शेर से कहा, जिसका नाम पिंगलक है, कि आप रुकिए, मैं जाकर के देख करके आता हूँ कि वो कौन सा जानवर है जिससे आप भयभीत हैं, हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। तो घुमायु गीदड़ की कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा,
भाई मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य रख सकता हूँ।
दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप अब तक यहीं ठहरिए, जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा,
क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहा हो?
दमनक ने कहा, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक शेर ने कहा,
अगर ऐसी बात है तो जाओ भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री पद का छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर अब तो एक ही रास्ता है, कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। तो बच्चों, उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी वह तो मामूली सा बैल है। दमनक स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया बच्चों। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा,
आ गए, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या?
दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूं। पिंगलक को आश्चर्य हुआ।
सच?
पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा,
तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुम्हें छोड़ दिया होगा, बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी।
दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर कहा,
ऐसा ही है महाराज, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र तीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ।
पिंगलक ने चकित होकर कहा,
सच कहते हो? ऐसा संभव है?
दमनक बोला,
स्वामी, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं।
तब पिंगलक ने कहा,
अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूं, तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूं।
पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा। और गुर्रा कर बोला,
अरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकारने गरजने से कुछ नहीं होगा। तेरी इस तरह गरजने की हिम्मत कैसे हुई?
संजीवक ने पूछा,
भाई भाई, ये पिंगलक कौन है?
दमनक ने जवाब दिया,
अरे तू क्या वन राज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है ना, वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं।
यह सुनकर संजीवक की कंपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला,
भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो, अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो, तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ।
दमनक ने कहा,
बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ, तुम कहीं जाना मत।
वह पिंगलक के पास जाकर बोला,
स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है।
पिंगलक भयभीत होकर बोला,
यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकराता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर, यह बता कि अब वह क्या कहता है?
तमनक बोला,
मैंने उसे कह दिया कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाई चारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है।
पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला,
मंत्रीवर दमरक, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैंने उसको अभय दान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभय दान दिलाकर मेरे पास ले आओ।
दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला,
मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभय दान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो। किंतु याद रहे, राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मन माना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल शासन करूंगा। मंत्री के पद पर रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं।
संजीवक ने पूछा,
यह दंतिल कौन था?
दमनक कथा सुनाने लगा। तो बच्चों, अब ये दंतिल कौन था, ये कहानी हम अगली बार सुनेंगे। आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सुन सुन के। भेजते रहिए, कहानियाँ पढ़ते रहेंगे और मैसेज आते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम है पंचतंत्र की कहानियाँ। तो पंचतंत्र की कहानियों से किरण दीदी को दीजिए विदा। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो। बुद्धि बढ़ाएगी, सफल बनाएगी, जीवन का ये मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो। गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो। आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दे की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण, और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूँ मैं, किरण आचार्य।